अब आते हैं हम अपने इस प्यारे से पाकिस्तान की तरफ। हर दर्स में एक कोटेशन पढ़ के सुना रही हूँ, आपको तो ज़रूर सुनानी है। अभी जब शहर में दाखिल हुए, अल्लाह ही दिल में डालता, मैंने सोचा भी नहीं था, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि सियालकोट की नज़र अल्लामा इकबाल यहीं पैदा हुए। जो भी था आप सभी जानते, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सियालकोट के नाम के साथ अल्लामा इकबाल का एक ख़ास ताल्लुक़ है। अगर हम अपने मोहसिनों में से एक मोहसिन को डॉक्टर इकबाल के नाम से जाने तो कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। बस लोग रिलीजियस सोच के साथ जब ऐसे लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो मानते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे कौमी लीडर थे, लेकिन बस लोग उनको मजहबी लीडर नहीं मानते, और उसकी बहुत बड़ी वजह उनका बज़ाहर हाल हुलिया है। मैंने इस सारी बात के करने से पहले मैंने दोनों को डीपली स्टडी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले महीने डेढ़ से काफ़ी मौका मिला, और मैंने जिस चीज़ को देखा वो मैंने देखा अल्लाह अपने दीन का काम ले लेता है। इस दीन के लिए हर एक की ज़रूरत है। अगर आप दीन का पैगाम बता के बोल के इस वक्त शऊर पैदा कर सकते हैं ना, तो ये भी दीन की खिदमत है। लेकिन अगर आपने इस इदारे को रजिस्टर करवाना है तो आपको एक बैरिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना, और अगर आपने गवर्नमेंट से अपना कोई हक लेना है तो आपको एक अपना कोई ऐसा नुमाइंदा जो गवर्नमेंट में हो उसको लेना पड़ेगा ना। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ये दो मोहरे थे जिसको अल्लाह ने चुना। कायदे आज़म एक बैरिस्टर थे, किसी ने किसी को भी कहा, नाम नहीं लेती, शख्सियात जानी पहचानी होती हैं, ज़रूरत नहीं। जब कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने की तहरीक पे उन्होंने कायदे आज़म को ओके कर दिया तो एक उस दौर के मजहबी रहनुमा थे, तो उन्होंने उस शख्स को आर दिलाई कि तुमने एक दाढ़ी मुंडे के हाथ पे बैत कर ली, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने दाढ़ी मुंडे के ऊपर बैत नहीं की, मैंने एक ऐसे बैरिस्टर के हाथ पे बैत की है जो ना बिक सकता है, यानी वकील वही होता है जो बिके ना, और जो मेरा हक ले सकता है, और वो मोहम्मद अली जिन्ना है। अमानतदारी, सच्चाई, अपने मिशन के साथ सच्चे थे। आपको कहते कि एक ऐसा दौर बरसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री में आया था कि ये छोड़ के जा चुके थे, इनका इस तहरीक से कोई हिस्सा नहीं था, इंग्लैंड चले गए। अल्लामा इकबाल की तो नेशनैलिटी भी ब्रिटिश थी, कितने लोगों को ये पता। हमारी सिस्टर्स ने, किसी ने मेरी इसमें हेल्प की, तो उन्होंने जाके अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी पढ़े, एक डिफरेंट मीडियम्स होते हैं तो उधर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको पर्सनैलिटीज़ की मिलती हैं। वो पढ़ने के बाद उन्होंने एक छोटा सा पेपर लिखकर भेजा जिसका खुलासा क्या था कि आज अल्लामा इकबाल के बारे में डीपली पढ़ा, कब पैदा हुए, क्या। जब मैंने उनकी नेशनैलिटी पढ़ी तो बाय नेशनल, जैसे हम सबकी कोई ना कोई नेशनैलिटी है ना, तो वो बाय नेशनल ब्रिटिश थे। फिर कहती है मैंने उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इन लीडर्स को चुना जिन्होंने हमें पाकिस्तानी नेशनैलिटी दिलाने के लिए दिन रात की कोशिशें की। तो याद रखिए, इन्नल्लाहा ला यज़लिमु, अल्लाह ज़ुल्म नहीं करता, मिसकाल ज़र्रतिन, ज़र्रे बराबर नहीं करता। लेकिन अल्लामा इकबाल का नाम पाकिस्तान के साथ तो है ही है, बरसगीर पाको इनकी इस मूवमेंट का तो मेरा इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है वो क्या देखी है, इनका कुरान के साथ शगफ। इनके अपने घर के मुलाजिम की गवाही है कि जब ये दोपहर के वक्त बैठ कर कुरान तिलावत करते थे, इतना रोते थे कि इनके आंसुओं से वो सफ़े गल जाते थे, और जब ये कुरान पढ़कर फारिग होते थे ना तो हमें वो मुसहफ धूप में रख के सुखाना पड़ता था। इनके अशार पढ़िए, इंशाल्लाह अगले दिनों में कुछ चीज़ें शेयर होती रहेंगी आपके साथ। अब ये बातें तो मैं सिर्फ सियालकोट की नज़र कर रही हूँ इस वक्त, ऐसे ही रह जाती। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को अपने दीन की समझ दी होती है, बाज़ अशार ऐसे अल्लामा इकबाल के कुरान की आयत का तर्जुमा सीधा सीधा ना लिखे, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, ये सीधा तर्जुमा है ना, बल्कि उसको एक शेर की सूरत में निकले, इतना मनो व अन कुरान के टेक्स्ट के मुताबिक है। ऐसे लीडर्स जो अपना हिस्सा करके चले गए और ये खूबसूरत ज़मीन हमें मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हो, मैं लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं बोलना चाहती, हमारा कोई मैसेज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर एक आज़ाद रियासत तो मिल गई ना। लेकिन आज हमने उस किताब के साथ क्या किया, जो चीज़ मैंने नियत की थी कि पाकिस्तान के हर वेलकम रमज़ान में ज़रूर ज़िक्र करूँगी, वो आपका भी हक है, और वो क्या है, रमज़ान قرآن اور پاکستان، کیا میں پاکستان کا عمل 27 رمضان کو ہوا. یہ وہی شب تھی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس پاکستان کی بقا قرآن کے ساتھ ہے. اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدْعُو بِهَا آخَرِينَ. اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو زندہ کرتا ہے، قوموں کو کھڑا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو گرا دیتا ہے. آپ نے میں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ، اور اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ آج میرے آپ کے ہاتھ میں. وہ جانے والے چلے گئے، وہ اپنے حصے ڈال کے چلے گئے، لیکن اصل بات یہ کہ میں نے آپ نے آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیسی مسلمہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے کیسی ہوں، اور میں ایک ملت کا فرد ہونے کے ناطے کیسی ہوں. آپ کو مجھے اپنے آپ کو اس کتاب کے رنگ میں ڈھالنا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سال کا دورہ قرآن جو انشاءاللہ چند دن کے فاصلے پہ رہ گیا، ہم انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گے اگر ہماری موت اس سے پہلے نہ پہنچ گئی، تو اس میں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کتاب پر عمل کر کے قومیں کیسے آگے جاتی ہیں، اور اس کتاب سے پیچھے رہ کر قومیں کیسے پیچھے جاتی ہیں. آج آپ کے میرے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم بھی لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دنیا کے اندر آگے بھی بڑھیں. آج وہ قومیں جنہوں نے دنیاوی ترقی کی وہ آگے بڑھ گئیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کیوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اس اصول کے تحت آج کے ویسٹ کو عزت کیوں دی ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ دین پہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ ترقی ہوگی، تو پھر وہ تو دین پہ عمل کیا کرنا ہے، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور دس اینڈ دیٹ، اور وہاں تو ہوموسیکشوالٹی ہے، اور وہاں تو سود کا رواج ہے. تو اس کا جواب سن لیجئے، ویسٹرن کنٹریز تو ویسٹرن ہیں لیکن ان کے جو نظام ہے نا وہ اسلامک ہے. وہاں عدل کا دور دور ہے، وہاں لیبر کی عزت ہے، وہاں لوگوں کو آزادی ملتی ہے، وہاں وہ لوگ جن کو حقیقت میں آپ اگر ڈسکریمینیشن نہ کریں نا تو آپ میں اور وہاں پیدا ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ایک بہت ہی پیارا جملہ میرا گمان ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے منسوخ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کفر پر قائم رہ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری کفر پہ قائم حکومتیں تھیں نا، یہ کیسرو، کسرا، نجاشی، حبشہ کا بادشاہ کفر پہ تھے نا، جیسے آج بہت سارے نان مسلم کنٹریز ہیں. فرمایا کفر پہ بہت ساری حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم اور بے انصافی پہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. آج آپ کا میرا اپنے حال کو دیکھیں تو حقیقت میں کہ ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اپنے اس منصب کو پہچان چکے. ہم دوسروں کی بات کم کریں گے، بہت ہی گھریلو قسم کا دورہ قرآن ہوگا اس سال کا، جس میں آپ ہوں گی اور آپ کے بچے ہوں گے اور جوان ہوتے ہوئے بچے، اور آپ کے لیے بھی وہی بات کہوں گی جو میں نے اپنے لیے پسند کی ہے. میں نے اپنے گھر کے قریبی بچوں کو بٹھا کر بات کی ہے الحمدللہ، اور کسی ایک نے بھی مجھے مایوس نہیں کیا. دل میں سوچ کر آئی تھی کہ پہلے تو دور دور کی بات تھی، ایک تو پاکستان کا نام، غربت، ٹائم زون ایک، اور پھر ٹاپک بھی ایسا. تو کل رات میں نے اپنے گھر میں بٹھا کر، جو بھی اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں آپ کو بتائیے قریبی، سب کو بٹھا کر میں نے چند باتیں کی. اسی وقت میں نے یہ بھی نیت کی ہے کہ میں نے آپ سب کے بچوں کے نام بھی ایک پیغام چھوڑنا ہے. چھوڑ دو، کوئی خالہ کہہ لے، کوئی بھپھو کہہ لے، کوئی جو بھی کہہ لے، ہم سب مسلم بہن بھائی تو ہیں نا. پہلے تو آپ خود کوشش کریں، ماں کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. شرط یہ کہ ماں بہت نہ بولے، کبھی کبھی بولے نا تو ماں کی بات سننے کے لیے بچوں کے کان کھڑے رہتے ہیں، اور جو مائیں ہر وقت بولیں اور بار بار بولیں اور کڑوا بولیں پھر ان کے بچے کان لپیٹ لیتے ہیں. ابھی آپ خود چھوڑیں میسج اپنے بچوں کو، آج گھر جائیے، سب بچوں کو جمع کریں، موقع دیکھ کر مناسب، اور انہیں پوچھیں کہ پہلے تو اپنا سوال کیجئے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میں کیسی ماں ہوں. میں نے بھی یہ سوال کیا تھا اپنے بچوں سے، میں کیسی پھوپھو ہوں، میں کیسی خالہ ہوں. شرماتے ہوئے کچھ بولے کچھ نہیں بولے، میری عزت رکھ لی. بہرحال ज़ारा ये कहना था अच्छी हैं। तो मैंने फिर उनसे ये पूछा, आप भी पूछिए अपने बच्चों से मैं कैसी माँ हूँ। बिलीव मी, अपने सारे बच्चों को खामोश, सब फ़ोन बंद कर करा के मुतमईन होकर बैठे। और मैंने ये पूछने के बाद कहा, वो आपकी चॉकलेट्स तो बैग में हैं। तो एक बोला, कहने लगा, फूफो पहले चॉकलेट दे दें फिर पूछिएगा, फिर हम ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो ये तो लाड होते हैं ना, प्यार होता है। ये चीज़ें कभी भी खुश नहीं करती रिश्तों को। जब आपके बच्चे आपके इस जुमले को सुनेंगे, पहली बात है वो आपसे कभी भी तवक्को नहीं कर रहे होंगे इस जुमले की, रो पड़ेंगे। आज अपनी बेटियों से पूछिएगा। फिर दूसरा सवाल पूछिए जो मैंने भी पूछा, बेटा अगर आपको चॉइस मिले, यानी आपको अपनी माँ चूज़ करनी पड़े, तो क्या आप चूज़ करेंगे? कोई दूसरी माँ लेनी है ज़्यादा प्यारी, इंग्लिश बोलने वाली, मॉड स्कॉट माँ? कोई बच्चा भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मांगेगा, सच्ची बताओ। फिर उसके बाद अब ये थोड़ी सी एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगी ना, तो फिर पूछे कि अगर ये बताइए कि मुझे आपसे और आपको मुझसे प्यार है, तो मैं आपके लिए क्या पसंद करूँगी? मैं आपके लिए वही पसंद करूँगी जो मैं अपने लिए पसंद करूँगी, और मैं आपके लिए कभी भी बुरी बात पसंद नहीं करूँगी। और फिर एक प्यार भरा वादा मुआहदा अहद ले लीजिए अपने बच्चों से कि बेटा मैं आपसे बहुत नहीं मांगती, एक चीज़ मांगूँ दोगे? वो सोचेंगे पता नहीं अम्मी क्या मांग रही हैं। अगर काम करता है बच्चा, क्या हो सकता है अम्मी सेलफोन मांगने लगी हैं, आजकल का हिट प्रोग्राम तो यही है। लेकिन जब वो पूछेंगे जी ज़रूर, तो आप कहें कि मुझे तुम्हारे 2.5 घंटे चाहिए एक महीने के लिए, हर दिन क्या तुम मुझे 2 और आधा घंटा दे सकते हो, जो वक्त तुम्हें मुनासिब है, जो मुझे मुनासिब लगे। और 24 घंटों में से 2.5 निकाल दे, पीछे फिर भी बहुत है, पीछे फिर भी ये ज़कात वाले रेशो बन रहा है, 97.5 तो फिर भी मौजूद है। इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें करके आप उनसे वादा लें। बेस्ट एंड आइडियल सिचुएशन तो ये है, 80 से बात आप कर लीजिए जल्दी से इफ्तारी का इख्तमाम, या अगर इफ्तारी बाद में करनी है तो वक्त ढूंढ लीजिए जिसमें आप सब हों, आपके बच्चे भी हों, मिलकर बैठकर एक दफ़ा कुरान को सुने। याद रखिए, इस उम्मत के नसीब तब जागेंगे जब घरों में माँ और बच्चे और शौहर मिल के कुरान पढ़ेंगे। जब तक आप और आपके शौहर मिल के दीन की खिदमत नहीं करते, वल्लाह ही अधूरी कोशिश है। मैं सलाम करती हूँ उन सारी अपनी साथियों को, और ऐसी सैकड़ों साथी हैं जो अकेली स्ट्रगल करती हैं दिन रात, उधर भी खुश करती हैं, इधर से भी डांट खा जाती हैं, उधर भी खा लेती हैं, कभी इधर लेट तो कभी उधर लेट, कभी उनसे बुरी तो कभी उनसे, फिर सिर्फ घर वाले वो नहीं, बाद को ससुराल से बातें करनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, और बाद को तो अपने महकों से सबकी सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन मैंने देखा है, तारीख गवाह, आइडियल सिचुएशन क्या है, एक कपल याद कर लीजिए तारीख का, किसका नाम लूँगी मैं भला, इब्राहिम और उनकी बीवी। क्या कहा था इब्राहिम ने अल्लाह को, सूरह इब्राहिम ही क्या कहते हैं कि अल्लाह तेरे कहने पे अपने बीवी बच्चे को गैर अजीज जर इन एक बंजर वीरान जगह पे छोड़ा यहाँ। ये घराने का सबर था। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हर हाजी और अम्मार यानी उमरा करने वाले को उस औरत के कदमों पे चला दिया कि नस्सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। उमरा पूरा नहीं होता, हज पूरा नहीं होता, जब तक आप सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा पे 7 चक्कर नहीं लगाते, जहाँ वो भागी आप भागें, जहाँ वो हल्की हुई आप भी हल्की हों। ये उस औरत को खिराज तहसीन था, और उस शौहर को खिराज तहसीन था जिसने बुढ़ापे की अकलौती औलाद को सिर्फ अल्लाह का घर आबाद करने के लिए, कह लीजिए अपने लफ्ज़ों में, अपना घर बेआबाद कर दिया। बर्बाद तो नहीं कहूँगी, बेआबाद तो हुआ होगा। रोटी तो इब्राहिम को भी चाहिए होती थी, कपड़े तो इब्राहिम को भी धुले हुए चाहिए ही थे ना। हमारे मर्दों के क्या इतकाज़े हैं हमसे, ये रोटी है ना, कपड़े इस्त्री कर देते हैं, धो देते हैं, घर साफ है, आ जाते हैं रात को बेचारे मेहमानों की तरह, थोड़ा खाया पिया, चले आप आराम कर लें, चले अगले दिन सुबह उनको जाने से पहले कुछ दिया। हर इंसान की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात की और अपने घराने की कुर्बानी ना देते तो आज ये खाना कबा बात ना होता। अल्लाह ताला कसमें खाते हैं उस शहर की, वहाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान नफी कबद। अगले ही जुमला देख ले, इंसान मुशक्क़त में पैदा किया गया। तो मैं और आप या तो अपने घर बनाएंगे सिर्फ, और अपने 4 बच्चे पालेंगे, और एक एक करके उनको ब्याहेंगे और फिर उनके बच्चों के बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और इंशाल्लाह फ़राइज़ अदा करेंगे, अल्लाह के हुक्म से जन्नत में जाएंगे। आप एक भी नेकी और ना करें। वो हदीस मौजूद है सब के खुश होने के लिए कि जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज, रोज़े और जो भी बेसिक्स हैं उसका अहतमाम किया और शोहर को राज़ी कर लिया, वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से चली जाए। जन्नत लेनी बहुत आसान है, वेरी ईजी, बट आला जन्नतें लेना बहुत मुश्किल है। असहाबल यमीन में शामिल होना बहुत आसान है अगर अल्लाह कर दे, लेकिन असाबिकून अलवलून में शामिल होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुजाहदे, कोशिशें, मेहनतें, हिजरतें और वल्ला ही अल्लाह को ये कबूल होती हैं। आप यहाँ ना आते गर्मी में, घर में रहते, सफ़र की गर्मी आप सह कर आए। अभी मुझे नहीं पता सिस्टर आई हैं कि नहीं, गुजरावाला में दर्श था, बल्कि उससे भी पीछे बाबडा टाउन में था, तो वहाँ एक सिस्टर मिली हैं और वो कुछ बता रही, तो आप कह रही हैं आप चले, मैं भी आ रही हूँ। आप हैं माशाल्लाह, कैसा रहा आपका सफ़र? इधर आइए, आप इधर आइए। देखिए मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताऊं, रमज़ान हमें ये सिखाने आता है कि अपनी रूटीन लाइफ छोड़ो। और सुबह क्या हुआ मेरे साथ, यकीन करें मुझे रोना आ गया। दर्स ख़त्म करने के करीब थी मैं, 6-7 सिस्टर्स हॉल में आई, बेचारियाँ ऐसे गर्मी से घबराई हुई थी, एकदम देख के मुझे फ़ील हुआ कि इनकी हालत बता रही है कि ये दूर से आई हैं। और वही हुआ, जब एंड पे पास आए तो वो एक एक बस रोने वाले हालात थे उनके, मतलब बड़ी उम्र की भी थी, मीडियम भी थी। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? कोई नाम लिया तो उन्होंने दीदार सिंह के साथ कुछ, क्या नाम है, किला दीदार सिंह से हम आई हैं, रास्ता नहीं मिल रहा था, ढूंढती रह गई हैं, लेकिन हमने आपको देख लिया, बस इतना बहुत है। एक लफ्ज़ नहीं सुना उन्होंने मेरा, अले मैंने एंडिंग कह दिया हुआ था। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कहती व्हाट्सएप से। कहाँ से उठी, मुझे रोना आ गया। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनको एक्स्ट्रा, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, सेकंड्स को देखकर यहाँ पहुँची हूँ अल्लाह के हुक्म से। जो मेरे साथ थे मैंने उनको भी नहीं लिया, उनको भी छोड़ आई हूँ रास्ते में, टाइम ही नहीं है। देखिए ये नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए मिसालें देती हूँ, किसको आराम अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की कसम बैग भी नहीं खोलने का मौका मिलता, ज़रूरत ही कोई नहीं है, सिर्फ ये तड़प है कि आप रह ना जाएं। मुझे एक एक बंदे को जवाब देना पड़ता है कि तुम्हारा एक ये दर्स नहीं होगा तो क्या लोगों का रमज़ान अच्छा नहीं गुजरेगा? मैंने कहा नहीं, उनका गुजरेगा, मेरा आप में हिस्सा नहीं डलेगा। दौरा कुरान तो इधर पहले भी होना था, अब भी होना है। मैं आज ना आके आपको 4 लफ्ज़ बोलती, आपने तो फिर भी आना था, पर मैं महरूम रह जाती। कितना सुकून था, मैं पाकिस्तान आ चुकी 2 दिन से, आप 3-4 दिन आराम करती, अपने गले को रेस्ट देती, अपने प्यारों को मिलती, खून के रिश्ते, प्यार सभी होता है, और फिर मैं फ्रेश अप होकर एकदम शुरू करती, फिर मेरी बात में असर नहीं होना था, फिर मैं आपको नहीं कह सकती थी कि आप भी बेआराम हो। नज़र आगे है, पीछे नहीं है। और मैंने देखा अगर आगे नज़र ना हो तो बंदा कभी अपनी जगह पे पहुंच ही नहीं सकता, और जब आप नियत करते हैं वो सारी कायनात आपका साथ देती है। ये सीखिए, ये इब्राहिम की मिसालें, ये बीबी हाजरा की मिसालें, ये नन्हे इस्माइल की एड़ियों से अगर जमजम के चश्मे निकले हैं, अल्लाह की कसम आपकी गोदों में बैठे इन बच्चों से भी जमजम के चश्मे निकल सकते हैं। और आज फिर इंसानियत तरसी हुई है, आज हमें जमजम की ज़रूरत है, पाक पानी पेट में जाए, इल्म का भी, रिस्क का भी पाक। हमने इस पाकिस्तान को बहुत गंदा कर दिया, कहीं इसमें रिश्वत है तो कहीं इसमें गंदगी है, और कहीं ज़ाहिर है कहीं कुछ है, लेकिन याद रखिए कि अभी हम जिंदा, अभी हम मायूस नहीं हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ही ज़रखेज़ है। जी सिस्टर आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ बिल्कुल, क्या चीज़ आपको वहाँ से इधर लेकर आई, आप शेयर करेंगी कुछ भी? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि सिर्फ एक दर्द सुनना होता था वो तो सुनी चुकी, तो ये मेरे इस सफ़र क्यों करके आई? और भी किसी ने कहा था हम आएँगे, वो पता नहीं अब पहुँचेंगे नहीं।
क्या हाल है? असल में पिछले साल उस्ताजा हमारे उधर अदारे में आई थी, तो इनको शायद याद नहीं हो, शालीमार टाउन में।
जी जी, अच्छा अब जहाँ से स्ट्राइशा होती है।
हाँ जी, उधर।
अच्छा माशाल्लाह,
तो उधर आई थी, उधर मैंने फर्स्ट टाइम इनका दर्द, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे इनके लेक्चर्स हम सुनते रहते हैं। तो पिछली दफ़ा जब ये आई तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, घर में कुछ मसरूफियात थी और फैमिली में एक दो डेथ भी हो गई हुई थी, तो वो मिस हो गया मुझसे। तो इस दफ़ा तो मैंने इरादा किया हुआ था कि आएंगी तो जहाँ जहाँ कोशिश मेरी हो सकी मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इन्होंने मॉर्निंग में दिया है दर्स उधर गुजरावाला में, वापडा टाउन में, तो वो भी मैंने सुना है। तो एड्रेस का था ज़रा मुझे मालूम नहीं था, तो अभी मैं इधर भी ऑटो वाले ने मुझे उतारा है, तो वो कुछ बैनर ना उल्टा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। तो कहते हैं इधर कोई नहीं अदारा इस तरह का, तो वो आप आगे चले जाओ। मैं 1.5 घंटा बस ऐसे ही गलियों में चक्कर लगा,
हम खुद आधा घंटा घूमे हैं, शायद 10वीं दफ़ा आए और 10वीं ही दफ़ा घूमे हैं।
तो अलहमदिल्ला बस दुआ थी कि ये अलग कुछ भी है, थोड़ा सा भी है, मुझे उधर पहुँचा दें। तो फिर आगे से आके पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ है इधर एक अदारा, तो आप उधर जाएँ। तो मैंने शुक्र किया अलहमदिल्ला, फिर आके देखा है सुना है, तो मुझे सुकून मिल गया अलहमदिल्ला।
जज़ाकअल्लाह खैर। तो ये पॉसिबल है ना, और कई इस शहर से भी नहीं आ सके होंगे, ये तो नसीब की बात है, मसरूफियत की बात है, वक्त वक्त की बात होती है। बहुत सारे कानों पे बात पड़ती है, लेकिन कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुन पाते। कोई यहाँ नहीं सुनेंगे, कहीं और सुन रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपका मेरा काम क्या है फिर, कि हमने अपने आप को महरूम नहीं करना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، یا اللہ اس جگہ کو قیامت تک کے لیے آباد رکھنا، یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور عافیت والا بنا دے، اس کی ایک ایک برکت کو سمیٹنے والا ہمیں بنا دے، یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے تیرا کلام سن سنا کر چلے جائیں اور ہم پریشان ہی رہیں۔ یا اللہ ہمارا حصہ اس خیر کے کاموں میں ڈال لینا۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی سے خیر کا کام لیں، اور یا اللہ اس جگہ کو دیکھنے والے، چلانے والے، اس کی ٹیک کیئر کرنے والے، یا اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا بھی دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والا بھی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں کسی سے کچھ بھی نہیں لینا نہ ملے گا، ہمیں صرف تیری شان سے اس چیز کو چاہیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، اور یا اللہ سب ساتھی جو ارد گرد رہتے ہیں ان کو اس جگہ کا شکرانہ ادا کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔